ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ज्ञान सुना करके नया जन्म दिया, अपना बच्चा बना लिया। हम भगवान के बच्चे बन गए, शिव बाबा के बच्चे बन गए। उन्होंने हमको चुन लिया। इतनी बड़ी दुनिया है, देखो 7 बिलियन इस वक्त आबादी है दुनिया की, उसमें से हम कितने हैं? पहले 9 लाख थे, 10, 11, 12 लाख कितने होंगे? बहुत थोड़ा परसेंटेज है कि हमको बाबा ने चुना, अपना बनाया। ये बड़ा भगवान के बच्चे बन गए, हमें ये ज्ञान समझ आ गया। बहुत वंडरफुल ज्ञान है, बहुत दुनिया के लिहाज से मतजाद है, यानी बड़ा कंट्रास्ट का ज्ञान है। सभी को समझ नहीं आता। जिसको ये समझ आ गया बाबा का ज्ञान, वो ही बहुत सौभाग्यशाली है। केवल इतना ही नहीं, और क्या हुआ, बाबा ने अपना बना के हम बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, हम जब आया तो 20 साल के थे, अपना बच्चा बना के फिर किसी कार्य में लगा दिया। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। सेवा में लगा दिया, अपना मददगार बना दिया। देखिए हम कौन है, सभी पहले कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, बाबा की याद तो करता है, बाबा को बाबा तो कहता है। बाबा कहता है क्या, देखो जो 8 दिन का भी बच्चा है ना, वो जो 8 दिन हुए ज्ञान में आए हुए, वो बाबा कहा, बाबा को समझ लिया, वो बहुत बहुत बड़ा VIP है। वही VIP है। देखो उन बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से, साधु सन्यासी बड़े बड़े अपने को जो कहते हैं, वो उनसे बड़ा है वो, क्योंकि उसने बाबा कहा और बाबा को समझा, बाबा को पहचान लिया। बहुत बड़ी बात है ये। बाबा तो ये कहते हैं, किसी को तुम चक्कर का ज्ञान भी दे दोगे ना तो क्या बन जाएगा वो, है चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, चलो चक्रवर्ती प्रजा तो बन जाएगा। तो देखो कितना हमें बाबा ने सौभाग्यशाली बनाया। तो हम बाबा के किसी काम आगे उसके मददगार बन गए हम सभी। ये देखो, बाबा को याद करना भी तो बाबा की मदद करना है ना। आप अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन फैलाते हैं और वायुमंडल ठीक करते, प्रकृति को ठीक करती है। ये बहुत बड़ा कार्य है, दुनिया में क्या लगा पड़ा देखो। तो हम भी ऐसे बाबा ने अपना बनाया पिछले 58 वर्ष से, और बाबा ने अपने कार्य में लगा दिया, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। बहुत अपने को, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है। अब ये आपने देखो बाबा की हिस्ट्री तो सुनी होगी, बाबा की जीवन कहानी की बुक्स बनी है, वो भी पढ़ी होंगी, और बाबा की सब जानते होंगे कि बाबा ने क्या क्या किया। तो हमने बाप समान बनना है, ये टॉपिक आज का। देखिए दुनिया वाले क्या करते हैं, भगत लोग क्या करते हैं, जाते हैं और गुरुओं के पास जाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा गुरु अपने जैसा बनाता है, अपना चेला चांटा बना देते हैं। या भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, तो जाएंगे मंदिरों में तो क्या कहेंगे, आप जानते हैं क्या बोलते थे, आरती में क्या बोलते हैं, कभी नहीं कहते हम भगवान जैसे बन जाए, या हम जो हमारा इष्ट है उस वैसे बन जाए। उसकी पूजा पाठ करके उसको बड़ा कह के अपने को नीच कहते थे। तो यहां तो बाबा कहता, नहीं बच्चे तुम तो मेरे जैसे बनो, बाप समान बनो। कितनी बड़ा फर्क है। हमारा लक्ष्य भी क्या है, क्या लक्ष्य है, क्या बनना है, बाप समान। अभी तो बाप समान बनना है, फिर जैसे बाबा बनेगा श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, तो फिर हम वो बनेंगे। अभी प्रेजेंट हमारा लक्ष्य यह है कि हम बाप समान बने। कौन से बाप समान, कहते हैं दो बाप तुम्हारे, एक अलौकिक है एक पारलौकिक है, लौकिक तो है ही, पारलौकिक बाप तो शिव बाबा है। वैसा बन सकते हैं? एक दो बाबा ने कहा था मैं तो बेहद का हूं, बेहद का मालिक हूं, मेरे जैसा नहीं बन सकते। शिव बाबा समान तो बहुत बड़ी बात है, परंतु हमने बनना है जो उन जिस रथ में आए, ब्रह्मा बाप समान बनना है जिनका आधार लिया। परंतु हम तो कहें ब्रह्मा बाबा भी कैसे थे, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो जो गुण शिव बाबा के थे वही ब्रह्मा बाबा में भी तो आ गए। मतलब किसी प्रकार से भी हमने पुरुषार्थ कर करके बाप समान बनना है, बाबा जैसा बनना है। बाबा मीन बा और बा, दोनों बाबा इकट्ठे हैं, हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते। ये कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, ये कहा उर्दू में कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। ये देखिए तो वो ब्रह्मा बाबा भी क्या है, उसके नूर उसमें आता है तो वो भी तो बाप समान तो बन गए ना, बाप दादा में इकट्ठा कहते हैं। तो देखिए हम आप सोचे वैसा बनना है तो सोचे पहले कहां तक बने हैं, बने हैं कि नहीं बने, कितना फासला है हमारा उसके बनने में और ना बनने में। अभी हम जो अवस्था हमारी है वो और बाबा जैसे थे, बाबा जैसे हैं, क्या बने बाबा, कर्मातीत फरिश्ता बन गए, ट्रांसपेरेंट फरिश्ता, फ्लॉलेस, एकदम हल्के। तो हमको वैसा बनना है, तो ये विचार करें कि हमने बनना है, ये लक्ष्य है। अभी हमारा में कितना अंतर है सोचो, टाइम बहुत थोड़ा, बाबा कहते हैं कोई श्वास का वैसे भी भरोसा लो, टाइम कुछ भी हो अपने, अब भी हम भी कभी भी कोई जा सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है। और पुरुषार्थ भी, ये संगम जो कहे सत्युग में कोई बनते नहीं, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, वहां तो पुरुषार्थ करने की बात नहीं। त्रेता में भी कोई पुरुषार्थ नहीं, द्वापर में अंध श्रद्धावाद भक्ति करते हैं, ढूंढते हैं परंतु जानते नहीं ढूंढना किसको है। और कलयुग के तो और ही बुरा हाल है, तो अभी संगम का समय ही पुरुषार्थ चलता है, अभी ही बनना है। और बाबा कहते हैं बनना भी आप बच्चों को है, और कौन बनेंगे, बनना भी हम बच्चों का है, बनना भी अभी है। तो ये विचार करें, सामने देखें बाबा को अपने को, कि हम कहां तक नजदीक आए हैं, ये विचार करने की बात है। कितना बाकी फासला है, कितनी खाई है बीच में, थोड़ी है या बड़ी है, बहुत दूर है या नजदीक है, ये अपने को जज करना बहुत जरूरी है। तो आप बताइए कितने नजदीक पहुंच गए, अभी दूरी है, क्या कहते हैं आप है? बोलो, अभी मैं समझता हूं दूरी है, ठीक है, ठीक कह रहा हूं मैं, अभी फासला है। तो कैसे भरेंगे वो, देखो पहली यानी बाबा बन गए कर्मातीत फरिश्ता, एकदम कंप्लीट संपूर्ण बन गए। हमको वैसा बनना है, सबसे पहली स्टेज क्या है, हम विचार करें, चार पांच स्टेजेस हैं उस तक पहुंचने के लिए। पहली स्टेज कौन सी है, हम देखें कि हम उस पहली स्टेज को पार कर गए या नहीं किया। बोलो पहली स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज यह है कि हम विकर्माजीत बन जाएं। फर्स्ट बाबा कहते हैं अब कोई हम बच्चों से विकर्म नहीं होना चाहिए, अगर विकर्म हुआ तो डाउन, जो पहले कुछ है भी सही तो और ही डाउन चले जाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सुना, तो पहले हम सोचें कि हमारे से कोई विकर्म ना हो, विकर्माजीत बन जाए, पहली स्टेज तो। अब तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत पुराने भाई बहन होंगे ये, तो विकर्माजीत, कोई विकर्म ना हो, पाप कर्म से मुक्त हो, पाप का जो हमारे उल्टे संस्कार पहले कर्म से बने हुए हैं वो संस्कार तब खत्म होंगे, शुरू होने खत्म होने शुरू होंगे जब और हमारे कोई विकर्म ना हो, तो क्या बनना है? पहले विकर्माजीत, ठीक है सब विकर्माजीत हैं कि नहीं है ना? सब हाथ खड़ा करें, यस नो विकर्म। अब हमको कोई विकर्म नहीं करना है, विकर्म से डरना है, पाप कर्म से डरना है। अगर अभी भी बाबा के बच्चे बन के कोई विकर्म किया तो बाबा क्या कहता है? फिर बहुत सजा मिलती है। बाबा तो ये कहते हैं अगर कोई पहले विकर्म हो भी गया तो मुझे सुनाओ ताकि आधे माफ हो जाएंगे, अगर अभी किया तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए पहली स्टेज है कि विकर्माजीत बनना है, और दूसरी स्टेज क्या है? उससे नेक्स्ट स्टेज यह है विकल्पाजीत बनना है। नो विकल्प, कोई विकल्प ना आए। देखो बाबा शुरू में हम जब मुरलियां अभी भी सुनते हैं कहते बच्चे चलो विकल्प आता है, विकर्म नहीं करते तो कोई पाप नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। अब ये बात नहीं है, अब तो विकल्प चाहिए नहीं। विकल्प अगर आया मन बुद्धि में तो क्या होता है? जो आपने पहले योग लगा रखा है, कोई पावर जमा कर रखी है, वो बैटरी डाउन हो जाती है। सुन लो, अगर अशुद्ध संकल्प आया, दृष्टि वृत्ति में कोई इम्प्योरिटी आई, तो जो हम सभी ने जो बैटरी चार्ज किया है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये देखो नो विकल्प यानी विकल्पाजीत बनना है, ये सेकंड स्टेज है। तो बाबा भी समझते हैं मेरे बच्चे पुराने हो गए हैं, अब तो बड़े समझदार बच्चे हैं, अब इनको विकल्प नहीं आता होगा। बाबा को ये आता था कि मेरे बच्चे विकर्माजीत भी बन गए और विकल्पाजीत भी बन गए। यह सेकंड स्टेज, ठीक है, इसमें भी पास होंगे सारे, ठीक है ना? पास है सब, यस। देखो कई तो हाथ उठाते नहीं है, तो इसलिए नो विकल्प आए तो डरना चाहिए, फटाफट कोई विकल्प छुए ना उसको निकालो, हटाओ, भगाओ, उसको स्पेस मत दो अपने उसमें मन में बुद्धि में, डोंट गिव स्पेस, उसको जगह मत दो, फौरन हटा दो, किसी अच्छे कार्य में बिजी हो जाओ, अच्छे संकल्पों को लाओ ताकि विकल्प ना आए। थर्ड स्टेज कौन सी है बोलो? तीसरी स्टेज कौन सी है? तीसरी स्टेज है व्यर्थ अतीत। सुन लो कि अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बच्चों में विकर्म भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, परंतु व्यर्थ है। तभी बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ समाप्त करो। तो व्यर्थ अतीत, व्यर्थ किसे कहते हैं ये भी बाबा हमें बताते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, ये है ना, वो जब हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं टाइम को, उससे टाइम वेस्ट जाता है। भले विकर्म ना बने लेकिन टाइम वेस्ट करना भी तो बहुत बुरी बात है, बहुत समय तक वो व्यर्थ में लगे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है, ये व्यर्थ जो है वो भी नहीं चाहिए, नो व्यर्थ। बाबा कहते हैं कि और इसके आगे और स्टेज है, चौथी स्टेज, नो साधारण। साधारण संकल्प से भी परे, हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे, उनसे मिलते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, उनके साथ चलते थे, उनके साथ खेलते भी थे, बाबा मुख में गिट्टी खिलाते थे, तो क्या उनका हर कदम, हम बताएं आपको, हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल, दृष्टि विशेष थी, साधारण नहीं थी उनकी, हम बताएं आपको, विशेष। किसी को वो ऐसी दृष्टि देंगे ना यूं उड़ जाता था। हम चल रहे हैं, बाबा किसी पे हाथ रख देगा, वाह, उसे खुशी का ठिकाना नहीं होता था, बताओ। यानी बाबा जो भी बाबा का उठना बैठना कर्म जो था, हर एक बोलना, हर बात में विशेषता थी। तो आप कहते हैं हम बाप समान बनना है, तो हमारा भी तो ऐसा होना चाहिए। हमारी वो हर संकल्प विशेष हो, यानी व्यर्थ समाप्त करने के लिए क्या करना है हम, जो व्यर्थ तो बाबा ये भी कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चों में व्यर्थ भी कम होगा, ज्यादा नहीं है, परंतु कोई समर्थ भी कम है, वो साधारण संकल्प बहुत है, साधारण। जो अभी आप वहां से यहां आए क्या सोच रहे थे, पूछो भी क्या सोच रहे थे, कुछ नहीं। यानी हमारा समय जो है ना कुछ नहीं में बहुत जाता है, नथिंग में, भले विकर्म नहीं करते, विकल्प नहीं है, व्यर्थ भी शायद ना हो, थोड़ा बहुत हो, परंतु समर्थ नहीं है, यानी वो कोई विशेषता नहीं है उसमें, जो संकल्प है वो विशेष नहीं है, समर्थ संकल्प नहीं है। तो बाप समान बनने के लिए जैसे बाबा का हर संकल्प हमारा, उनका बोल, उनका कर्म, उनकी चाल, उनकी सब चीज विशेष थी, तो हम बच्चों को भी यही करना है। हमारा कदम, हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारी संकल्प वो विशेष हो, वो समर्थ हो, वेस्ट नहीं हो, यानी व्यर्थ ना जाए। बाबा कहते हैं देखो ये अभी संगम युग का जो वो समय है, श्वास है, संकल्प है, ये बहुत बहुत बड़ा कीमती है, मोस्ट वैल्यूएबल है। अगर ये वेस्ट कर दिया तो क्या होगा फिर, सारा बाबा कहते एक संकल्प भी अगर हमारा वेस्ट किया तो कितना नुकसान होता है वर्षों का। अगर एक संकल्प हमारा वो हो गया, सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो हमने कितना प्राप्ति कर ली। तो ये देखना है कि हमारा यो जो है, कहते हम श्वास वेस्ट ना जाए। श्वास कैसे बनते हैं, हर एक के जो 10-12 श्वास तुम एक मिनट में आते होंगे, वो तो रोक नहीं सकते, 10-12 की जगह जो 8 हो जाएंगे, कोई 8 योग करके या 4 हो जाएंगे, श्वास तो जाएंगे ना। वो ऐसे समय भी बीत जाएगा, अभी देखो 11 बजने वाले हैं तो 12 बज जाएंगे, समय भी बीत जाएगा, समय को भी नहीं रोक सकते। हमारे पास केवल मार्जन है संकल्पों को ठीक करने की, ना श्वास रोक सकता है ना समय रोक सकता है। हम केवल हमारे पास जो मार्जन है कि हम अपने संकल्पों को बदलें, संकल्पों को व्यर्थ की बजाय समर्थ बनाएं, तो ये करना है बस। केवल ब्राह्मणों का पुरुषार्थ और तो हम करते हैं, मुरली सुनते हैं, अमृतवेला करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा एक एक संकल्प क्या बन जाए, शुद्ध संकल्प बन जाए, समर्थ संकल्प बन जाए, इसे कहते हैं योग। यानी योग का मतलब यह शुद्ध संकल्पों का जमा करना, उसका खजाना बढ़ाना, वो उसको पॉजिटिव को ज्यादा से ज्यादा जमा करना, यही तो वास्तव में योग है। और याद है किसे, याद को बहुत डिफिकल्ट ना बनाए, शुद्ध संकल्प करते रहेंगे तो हमारा खजाना जमा होता जाएगा, तो और सभी खजाने आ जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ करना है हमको बाप समान बनने के लिए कि कर्मातीत फरिश्ता मीन्स हमारा, जैसे बाबा का हर कदम कर्म और वो था, सब उन्होंने सफल किया और वो कर्मातीत बन गए, ऐसा करना है। देखो दूसरा बाबा ने क्या किया, और देखो जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए उन्होंने क्या किया, एक मुरली में आया था, बच्चे जब मुझे साक्षात्कार हुआ स्थापना का भी और विनाश का भी, और मैंने देखा कि नई दुनिया आने वाली है, ये पुरानी दुनिया का विनाश देगा जबरदस्त, तो क्या किया, अपना पूरा सब कुछ, तन मन धन और इसमें अर्पण कर दिया, एक यज्ञ की स्थापना की। देखा, कहा मैं अपना बिजनेस भी छोड़ दिया, इतना बड़ा बिजनेस था, ज्वाहरात का धंधा था, देखो यानी बहुत भारत में क्या फॉरन तक बाबा का धंधा था, देखो अभी नेपाल महाराजाओं से कनेक्शन था, बड़े बड़े उसको उनको मान्यता देते थे वो, उनको भी छोड़ दिया। अपने परिवार को भी ज्ञान मिला है, भले अभी कोई चले गए या कुछ किया, लेकिन सभी बच्चों को, बच्चियों को, सबको ज्ञान में लाया। कभी सोचा नहीं कि आगे क्या होगा। इतना बड़ा भागीदार से कहा लो फैसला करो, अब जब मेरा बनता है दे दो, बाकी अपने आप संभालो। इतना बड़ा अगर हो, बाबा कहते चलो धंधा चलता रहे, पैसे आते रहेंगे, यज्ञ चलता रहेगा, नहीं, सब कुछ यज्ञ में समाप्त अर्पण करके माताओं को आगे बढ़ाया। देखो तो ये बाबा का पहला स्टेप था। देखिए अब विचार कीजिए, तो बाबा ने कहा मैंने क्यों किया ये, ये भी प्रश्न मुरली में था, ये कुछ समय पहले की, ऐसा मैंने क्यों किया, आप बताओ बाबा ने ऐसा क्यों किया। बाबा ने स्वयं जवाब दिया कि इसलिए किया कि ताकि अंत में मुझे कुछ भी याद ना आए सिवाय शिव बाबा के। ऐसा हुआ, 32 वर्ष तक तपस्या की, पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया, और यज्ञ की स्थापना की, बच्चों की पालना की, पूरा एकदम उसमें वो हो गए, महू हो गए। तो क्या अंत में जब बाबा अव्यक्त हुए, स्वया दादी मोती दादी प्रकाशमणि जी को हाथ दिया और पंछी उड़ गया, एकदम कोई न लौकिक कोई याद था, ना और कोई याद था, तो बताइए अंत मते सो वो होना है, फिर फरिश्ता बन गए। इसी प्रकार से हम भी देखें, बाबा कहता कई दफा बच्चों से कहता है, अरे बच्चे अगर तुम्हारे पास खाने पीने को अच्छा है, ठीक है, मनी है, सब कुछ है, बच्चों को पालना करने के लिए है, क्यों ज्यादा धंधे में पड़ते हो, क्यों ज्यादा चक्करों में पड़ते हो, अपना ठीक रहो, बच्चों की पालन करो, सब कुछ को। आप तो ये तो नहीं हम छोर छाड़ के बैठ जाएंगे, अब वो जमाना तो गया। हमें तो बाबा ने खुद कहा मुझे कोई जॉब करने की दरकार नहीं, हम जब इंजीनियरिंग पास करके आए, स्पष्ट कहा, क्योंकि हमारे ऐसे सर्कमस्टांस थे, हमारे लोग सब ज्ञान में चलते थे, बाबा ने कोई दरकार नहीं, तुम सीधे मैं जो कहता हूं वो वैसे करो। हमने तो जॉब किया ही नहीं, इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी डिग्री भी लेने नहीं गए कि हमने कहा नहीं जो बाबा कहता है वैसे करना है। क्यों, आप बताइए, इतना ऊंचा ज्ञान, कमाल है, और इतनी बाबा की पालना, स्पष्ट दिख रहा है कि भी भगवान आया है और नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया जाएगी, तो क्या करना चाहिए, उस वक्त क्या सोचना चाहिए। जिसको ये निश्चय हो जाए परमात्मा आ चुके हैं, शिव बाबा का ज्ञान है, तो क्या करेगा वो। हमने तो यही किया, जो बाप का कार्य सो किसका, हम बच्चों का कार्य, ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि घर बार छोड़ के खत्म करना, वो बात नहीं है, परंतु क्या समझे कि ये बाबा का है, बस। मानो किसी की ये हमेशा हो कि ये जो मैं कर रहा, जो मुझे भी और बाबा ने कहा है ड्यूटी कुछ भी दी है, मानो किसी की दुकान है, दुकान में बैठना है, संभालना है, बेचना है, इन्हीं के लुटा देना है, वो बात नहीं, परंतु क्या समझे ये बाबा की है, ये बाबा का कार्य चल रहा है, ये मैं बाबा का काम कर रहा हूं, ये सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये देखना है कि जैसे बाबा ने किया उस प्रकार से अंत तक हमको संपूर्णता को पाना है, अंत में हमें स्वयं बाबा के कुछ भी याद ना है। जब भी ब्रह्मा बाबा को देखते थे, जब चलते थे बाबा के साथ साथ, बाबा पीछे मुड़ जाते थे, हम नक्की लेकर जाते थे ना पीछे पीछे बाबा के, पूछते थे पीछे मुड़ के बच्चे किसके साथ चल रहे हो, हम कहे बाबा के साथ चल रहे हैं, सब बोलते थे, खेलते थे बीच में रोक कर गए किसके साथ खेल रहे हो, बाबा के साथ खेल। तो बाबा हर समय बाबा 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 याद कराते थे। हमें एक याद है, एक समय हम आए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, देखो सारे देह के संबंधों को बाबा ने खत्म किया, फिर धीरे धीरे देह को भूलते भूलते भी वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए, अपने को फरिश्ता बना लिया। इसी प्रकार से हमको भी, हम एक मिसाल है, हम फर्स्ट टाइम जब बाबा के पास आए मधुबन में आए, हम पढ़ते थे उस वक्त, कैमरा हमारे पास था, बाबा उस वक्त 80 साल के होंगे, 80 ईयर्स, और अभी जहां शांति स्तंभ है हम देखते हैं, वहां पर पूरा मैदान था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना हिस्ट्री हॉल था ना वो था, केवल टीन का जो बीच का मकान था जब बाबा और सब ऑफिस था। तो वहां उस मैदान में बाबा खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। और वो एक हमारा दादा विष्णुतन थे, आप शायद देखा को नहीं देखा, वो बाल फेंकते थे और बाबा खेलते थे, और बच्चे बड़े हंसते बहलते उनको पकड़ते थे। तो मैंने कहा बाबा का इतना ये कौन खेल रहा है, शिव बाबा की प्रवेशता है और देखो इतने बाबा धोती कुर्ता पहन के और इतनी पर्सनैलिटी और बाबा खेल रहे हैं। तो मैंने कहा फोटो लेना चाहिए। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की तो पता बाबा ने कहा नहीं फोटो मत लो। तो बाबा बाहर कहने लगे बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। क्या मतलब इसका, किसका फोटो नहीं आएगा? ना शिव बाबा का आएगा ना ब्रह्मा की आत्मा का आएगा, और ये शरीर तो किसी काम का नहीं। और बोला शब्द मैं वो बोलता नहीं हूं। तो देखो मतलब कहने बाबा हमेशा हर बात में क्या करते थे, देह से परे ले जाने की कोशिश करते थे। किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है, देखना भी शिव बाबा को है, और हर बात में अपने को आत्मनिश्चय करो, देह से न्यारे बनो और शिव बाबा को याद करो। बाबा का हमेशा बार बार ये हुआ करता था। जब बाबा कोई क्लास में कोई वो सुनाते थे, कोई गीत सुनाते थे, कोई हमारे कवि जी थे, तो जब वो ब्रह्मा बाबा की महिमा आती थी बाबा कहता था बस नहीं, याद किसको करना है, महिमा किसकी है उसकी, हम तो कुछ भी नहीं है। देखा जाए हाँ बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा का बच्चा बनाया भी किसने, कार्य किसने दिया? तो बाबा बार बार कहते थे हर कार्य में जो है शिव बाबा को आगे रखो। देखो कभी कई दफा हम देखते हैं बाबा खाना खाते थे तो कहते थे किसके साथ खा, कौन खिला रहा है, बाबा खिला रहा है। यानी हर बात में बच्चों को क्या करते थे कि देह से न्यारा बनाने की कोशिश करते थे और बाबा को याद करने की शिक्षा देते थे। हम जब आए एक दफा, अभी फर्स्ट टाइम जब आए थे उसमें बाबा भी थे, बाबा की युगल भी थी, उनका नाम जशोदा था, और मम्मा भी थी, मम्मा की माँ रोचा वो भी थी। बड़ा एक फर्स्ट नए थे हम, अजब लगता था जब उनसे, जब मम्मा की माँ, मम्मा को मम्मा बोलती थी और मम्मा उसको बच्ची बोलती थी, बोलिए कितना बड़ा एक कम बात थोड़ी। एक गांधी जी ने उसको कस्तूरबा को माँ बोल दिया, कितनी बड़ी महिमा होगी। और बाबा अब उसको यशोदा को बच्ची बोलते थे और पुकारते थे, और यशोदा जो उनकी युगल थी उनको बाबा बोलती थी। कितना बिल्कुल ह्यूज, एकदम खत्म, यानी वो कोई देह का संबंध तो उस पर था ही नहीं। इतना वातावरण होता था जैसे कि सारे वो हैं, यानी देही देहिक, यानी विदेही सारे हैं, ऐसा देखने में आता था। तो हम बच्चों को भी ऐसा वातावरण बनाना है कि सदा देखो बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, जब शुरू शुरू में आए आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ये बहुत पुरुषार्थ किया। तो हम बच्चों को भी उस वैसा बनने के लिए ये बार बार मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, जो आत्मा के गुण है स्वच्छ हूं, स्वस्थ हूं, संतुष्ट हूं, खुश नसीब हूं। ये बार बार रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, वो रियलाइज होगा। हम पूछें किसी बच्चे से पूछें आप कौन है, कहेंगे हम तो आत्मा है, बता देगा वो। लेकिन रियलाइजेशन तब होगी जब हम उसको रिवाइज करते जाएंगे, बार बार रिवाइज करें। कोई भी हमारा वो ना हो, यानी एक सेकंड भी इसके अलावा ना हो, बाबा को याद करें। देखिए घर को याद करें, बाबा के गुणों को याद करें, अपने गुणों को याद करें, और जो योग है याद को बिल्कुल सहज बना दें। बाबा तो कहता है योग शब्द ही निकाल दो, कहता ना कई दफा मत योग बोलो, क्या बोलो, यात्रा बोलो और याद बोलो। इतना सिंपल बनाए हम उसको कि उसमें मुश्किलात ना हो। हम तो बाबा को याद क्यों करते हैं, संबंधों से याद करते हैं। हम तो बाबा के संबंध में आए, बाबा के साथ हर प्रकार से संबंध में आने का मौका मिला कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सखा भी है, मां भी है, हम अभी नौ संबंधों से बाबा को याद करते हैं। संबंध से याद करें तो खुशी आएगी, उसे अपनापन फील होगा, वो उसको ये मर्ज करके वैसे याद करें। इस प्रकार से हम याद को अगर सहज बनाएंगे लगातार, बाबा देखो हर मुरली में कितनी बार बाबा कहते हैं याद करो याद करो याद, सारी चीज याद पर डिपेंड करती है। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, याद नहीं करेंगे तो पावर नहीं आएगी, याद नहीं करेंगे तो रूहानियत नहीं आएगी, याद नहीं करेंगे तो आपसे वाइब्रेशंस जो हों शुद्ध वो नहीं होंगे। मेन चीज है याद। बाबा ने इतना हर बात में बाबा ने याद किया, तो हमको भी याद का बहुत पुरुषार्थ करना है। कैसे याद करना है मैं बताऊं, यानी जितना सहज बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि संबंधों से याद करने से बड़ी खुशी होती है। मैं तो नौ संबंधों से याद करता हूं, मैं बता देता हूं आपको कैसे। सबसे मीठा और प्यारा संबंध कौन सा है आप बताइए, कौन सा है बताओ। सबसे प्यारा और मीठा संबंध जो है, डियरेस्ट हमारी मदर है, वो मां है, क्योंकि हमारा पहले ब्रह्मा मुख से हम पैदा हुए, अगर पैदा ना हुए तो आगे और क्या चलता। तो ही इज आवर डियरेस्ट मदर। क्या करती है वो मदर में, ज्ञान दूध पिलाती है, बड़ा करती है, पालना पोषण करती है। तो किस द्वारा हुआ, ब्रह्मा द्वारा हुआ ना, तो उसको भी हमें सामने आता है याद करते हैं। तो फर्स्ट आवर जो है वो ज्ञान दूध पिला के हमको हृष्ट पुष्ट बनाती है, ही इज आवर डियरेस्ट मदर। सेकेंड संबंध कौन सा है हमारा बाबा के साथ, बाप का है, ही इज आवर स्वीटेस्ट फादर, अति मीठा है। अब देखो और लौकिक में भी बाप स्वीट मीठा होता है, बच्चों को पालना करता है, भाई मेरे से बड़े बन जाएंगे, ये तो हमारा स्वीटेस्ट फादर है। स्वीटेस्ट फादर क्या करता है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे देता है। अभी दे दिया हम बच्चों को कि चलो स्वीट होम में बैठो, अभी तैयारी करो और स्वीट होम को याद करो, तो वहीं जैसे बैठे हैं और स्वीट राजधानी जो हमारी राजधानी आने वाली है उसको भी याद करो, उसमें भी अब चलो, उसका वर्षा हमको मिल ही गया है। थर्ड संबंध क्या है, हाईएस्ट टीचर है वो, हाईएस्ट। दुनिया में टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा कार्य करते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो हाईएस्ट हूं, और इजीएस्ट पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत छोटी सी और इजीएस्ट पढ़ाई है। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष क्या है, देखो दुनिया क्या करती है, 4,32,000 ये वो, कितना लंबा, माताओं को तो समझ भी ना है, रिवाइज भी रिपीट भी ना कर सके। बाबा कहता नहीं, केवल 5000 वर्ष है, उसको चार भाग कर दो, 1250, 1250 और उसमें संगम है छोटा सा, फिर सत्य। कितनी सिंपल पढ़ाई है। और बाबा कहता है चक्कर को भी कोई जान जाए, उसमें निश्चय हो जाए, उसको याद करे तो क्या बन जाएगा, चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। बताइए कितनी इजीएस्ट पढ़ाई है, सिंपलेस्ट इजीएस्ट, और स्टेटस हाईएस्ट। सिंपलेस्ट पढ़ाई, इजीएस्ट पढ़ाई, और हाईएस्ट हमारा टीचर, और बन जाते हैं हम यानी हाईएस्ट स्टेटस। आईएस भी कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, उसके लिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण हाईएस्ट स्टेटस हो जाता है। इसलिए उसको इमर्ज करो, ये कौन पढ़ा रहा है और क्या बनने वाला हूं, और पढ़ाई हमारी क्या है, उसको खुशी होगी उससे, ये भी याद है। फिर होलीएस्ट सतगुरु, होलीएस्ट हमारा गुरु कौन है, पतित पावन परम पवित्र, वो हमारा गुरु है, उसको हम याद करें। क्या करते हैं, आशीर्वाद देता है हमको, वो ब्लेसिंग्स देता है हमको, वो फिर कहां अपने साथ ले जाता है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। तो ये भी याद करें कि हमारा ही इज अवर हाईएस्ट सतगुरु। फिर और नेक्स्ट कौन सा संबंध है, अनफेलिंग फ्रेंड है हमारा, कभी धोखा देने वाला नहीं है, साथ छोड़ने वाला नहीं है, ये भी याद करें। बाबा हमारा क्या है, अनफेलिंग फ्रेंड, सदा साथ निभाता है, हम भी उसका कभी हाथ और साथ छोड़ने वाले नहीं है, ये पक्का इरादा करना चाहिए। याद का तरीका बता रहा हूं कि ये सदा याद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते चले जाएंगे, व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा, विकल्प की तो बात ही छोड़ो। और साधारण भी समाप्त हो जाएगा। इसी कार्य में लगे रहें लगे रहें लगे रहें तो सब व्यर्थ और वो यानी साधारण समाप्त होकर के समर्थ हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, अनफेलिंग फ्रेंड, सुलोना साजन है, वो सुलोना अति मीठा साजन है। क्या करता है, श्रृंगार करता है, ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार करके हमको कहां ले जाता है, वो बोलो पियर घर, परम धाम हमारा कौन सा घर है, पियर घर है, और फिर ससुर घर में भेज देता है। तो ये याद, सब चीजें याद आनी चाहिए, इमर्ज करना चाहिए। देखो मन बुद्धि दोनों को इस्तेमाल करो, मन में शुद्ध संकल्प है ये यही, और बुद्धि उसको देखे, उसको वियन देखे। वो मैं परम धाम याद है तो कैसे आएगा याद, मन में संकल्प आया, बगैर संकल्प के तो याद आएगी नहीं। और बुद्धि जो है उसको देख रही है, बिंदु बिंदु आत्मा गोल्डन लाइट, उसमें शिव बाबा हम सब आत्मा बैठी है सब, तो ये सामने सब चीज है। तो मन बुद्धि दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, मन में शुद्ध संकल्प और बुद्धि उसको देखे। तो ये याद है कि वो सुलोना साधन मुझे ज्ञान गुण शक्ति से श्रृंगार करके कहां ले जा रहा है, पियर घर, फिर ससुर घर भेजेगा। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम सर्जन है, बहुत हमारे पास आते हैं मैगजीन में, बहुत अनुभव आते हैं कि कैसे मेरा ऑपरेशन करा दिया, उसको डॉक्टर को दृष्टि दी, ऑपरेशन कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गए। बहुत ऐसे ऐसे हमारे पास अनुभव भी आते रहते हैं। तो अभी अभी टाइम आ गया, वो अभी आप देखना साक्षात्कार भी बहुत होने शुरू हो जाएंगे। बहुत मैगजीन में बहुत ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं कि कैसे मुझे बाबा ने बचाया, यहां बचाया, ये किया वो किया। तो अभी अगर हम बाबा को साथ रखेंगे तो वो हमें हर बात में हमारी मदद करेगा। सुप्रीम सर्जन है वो हमारे ज्ञान इंजेक्शन लगा करके, योग इंजेक्शन लगा करके तन मन को निरोगी बना रहा है, ये आना चाहिए। नेक्स्ट और क्या है फिर, वो फेथफुल चाइल्ड, बच्चा है हम सभी का, बच्चा बनाओ। बाप पूछते थे जब आते थे ना, जब माताएं आती थी कि कितने बच्चे हैं, वो कहते दो, एक बाबा कहते मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं। तो बाबा हमारा फेथफुल चाइल्ड है, तो क्या करता है, हमको हमारी उंगली पकड़ के बाप सागर में पार ले जाएगा, हमें ऊपर परम धाम में ले जाएगा। तो ये याद करो कि और बच्चे धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो बच्चा ऐसा कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है, परंतु अपना हाथ उसको पकड़ा देना चाहिए। तो वो फेथफुल चाइल्ड भी है। एंड नेक्स्ट संबंध क्या है उसका, मोस्ट बिलवेड माशूक, शिव शमा है, हम परवाने हैं, फिदा होने वाले हैं। और अभी तो समय है फिदा होने का, फिर सत्युग में तो कोई बात ही नहीं, और कलयुग में पहले कुछ था ही नहीं, तो अभी समय है बाबा पर, शिव शमा पर फिदा होने का, हम उस पर फिदा होने वाले। तो वो मोस्ट बिलवड माशूक है, सत्यम है, वो सत्य है और शिवम है और अति सुंदर है, और किसी में आंख नहीं डूबती है, वो अति सुंदर है, फ्लॉलेस है, हीरा है वो, देखो। तो बुद्धि हमारी वहां जानी चाहिए, और किसी चीज में फ्लैक जानी नहीं चाहिए बात। तो ये हमें अगर ये याद करेंगे, संबंधों से याद करेंगे, गुणों से याद करेंगे, बुद्धि को इसमें बिजी रखेंगे, तो क्या होगा, व्यर्थ तो आ ही नहीं सकता। हम बताएं आपको, व्यर्थ नहीं आएगा तो समर्थ आएगा, समर्थ नहीं आएगा व्यर्थ समाप्त, और साधारण भी समाप्त होगा तो क्या बन जाएंगे आप, जहां से भी पास करेंगे कहेंगे ये फरिश्ता जा रहा है, जिससे भी बात करेंगे कहेंगे वाह, असर पड़ेगा उसका। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम ज्यादा साधारण में व्यर्थ में किसी और नथिंग में कोई हमारा संकल्प नहीं ऐसे चल रहे हैं तो क्या होगा। चल बाबा कहता है चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, जैसे मैं बाबा को याद करता हूं, तुम बच्चे भी ऐसे ही याद करो। सबसे अच्छा जो मैं बताऊं आपको, बाबा ने मेथड बताया है, बहुत होमवर्क भी दिया था, मेथड भी बताया था, बहुत सुंदर मेथड है। रियल में यात्रा तो वही है। आपको याद है कौन सा होमवर्क बताया था? है किसी को याद? नहीं हो तो बताओ। बाबा ने कहा था पांच स्वरूपों में मेरे पांच स्वरूपों को याद करो, था ना ये बात एक दो साल पहले, और बाद में बाबा ने रिवाइज भी किया था। बहुत सुंदर है, बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। कई कहते हैं ना मैं दुख, कई बहनें कहती हैं भाई कहते हम क्या सर्वस्व, सर्वस्व कुछ है नहीं। ब्राह्मण्स आर द मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर हम इन पांच स्वरूपों को याद करते रहें करते रहें करते रहें तो क्या होगा, क्या बन जाएंगे हम? एकदम फरिश्ता बन जाएंगे हम। बताएं आपको पांच स्वरूप याद है किसी को? बाबा ने कहा पांच स्वरूप कम से कम आठ बार याद करो। बहुत, मैं तो बहुत करता हूं। हम चलते हैं घूमते हैं ना ऐसे, उसको बहुत उसको अनलार्ज करते हैं, उसको बड़ा उसको लंबा करते हैं उसको, एक ही बार पांच स्वरूप याद आएंगे। बाबा ने कहा था एक मिनट में एक बार करो एक स्वरूप, फिर पांच मिनट में पांच स्वरूप याद आ जाए, और पांच आठ बार करो 40 मिनट तो याद करो। हम कहते नहीं, वो तो करो जैसे बाबा ने कहा है, परंतु उसको और लंबा करो। पांच स्वरूप कौन से हैं आपको पता ही है, मैं रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट स्वरूप जो है निराकारी स्वरूप, उसको बहुत लंबा करो। मैं निराकार आत्मा, अपने गुणों को याद करो, निराकार धाम को याद करो, निराकार बाबा को याद करो, संबंधों को याद करो, गुणों को याद करो। इसको बहुत एक मिनट की बजाय 5-10 मिनट हो जाएंगे। उसको पहले पहले उसको याद करो। अब ये शुद्ध संकल्प है, करते करते फिर क्या मैं और मेरा बाबा ऐसा भी हो जाएगा, मैं बाबा से गुण और शक्तियां ले रहा हूं आ रही है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्वरूप तो यह है निराकारी स्वरूप, मैं दूसरा अकारी फरिश्ता स्वरूप याद करता हूं। मैं अकारी फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता हूं, जीवन मुक्त फरिश्ता हूं, लाइट के आर्म में हूं और सारे विश्व को साकाश दे रहा हूं। बेटर हो इसमें कितनी देर बैठ सकते हैं आप? अपने को फरिश्ता मान करके एक बात इसमें, एज यू थिंक सो यू विल बिकम, ये लॉ है, साइंटिफिक लॉ भी है, दुनिया भी मानती है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। बट योगा, यही योगा है कि आप शुद्ध सोचो, शुभ सोचो तो वही बन जाएंगे आप। तो मैं अकारी फरिश्ता हूं, आप सोच रहे हैं उसमें बैठे हुए टिके हुए हैं, तो आप बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। आप उसको लाइट दे रहे हैं सारे विश्व को, साकाश दे रहे हैं। सामने ग्लोब रखो, सारे इस ग्लोब को मैं साकाश दे रहा हूं, लाइट जा रही है। याद करो एक मिनट दो मिनट जितने मिनट तक बैठ सको, और कोई संकल्प मत आने दो। थिंग इज दिस, देयर शुड बी फ्लो ऑफ थॉट्स, प्योर थॉट्स फ्लो चाहिए, नो इंटरप्शन, यानी और इंटरप्शन ना हो। जैसे नहीं पानी की धार जाती है ना, धार बहती रहे बहती रहे, शुद्ध संकल्पों की धार बहे, बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए। तो ये आकारी फरिश्ते रूप में टिक के बैठो। थर्ड है मैं वो निर्विकारी ना, निराकारी आकारी एंड निर्विकारी। निर्विकारी कौन होते हैं? ब्राह्मण निर्विकारी नहीं है, निर्विकारी होते हैं देवता। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है ना, वो देवता है, उसको याद करो। अब उसको इमर्ज करो उसको, वो कौन होते हैं? वो डबल क्राउन किंग, मैं बैठा हूं गद्दी पर, विश्व राज तख्त नशीन हूं, माया जीत, उसकी भी क्वालिफिकेशन है, माया जीत हूं, मृत्यु जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और जगत जीत, मैं हूं ये हूं, डबल क्राउन किंग हूं। उस स्वरूप को सारे इमर्ज करके बैठिए आप, फिर शिवालय में घूमिए, वो जो है वहां यानी स्वर्ग है उसको इमर्ज कीजिए। ये स्थिति को अपनाइए, दैवी निर्विकारी स्टेज हो। अब पांचवी कौन सी है? वो अलंकारी। अलंकारी मीन्स द्वापर युग में हम भी वो हैं, पूज्य रूप है, क्योंकि बाबा ने कभी पुजारी नहीं कहा कि हम द्वापर में पुजारी बनेंगे, हम पूज्य है, हम औरों को हमारी मूर्तियों से भी उनको वो साक्षात्कार होते हैं या उनको ताकत मिलती है, पूज्य हैं, हम वरदानी मूरत हैं, क्षमाशील है और रहम दिल है, ये सब बातें याद आनी चाहिए। और फिर पांचवी है निरहंकारी ब्राह्मण होते हैं, हम ब्राह्मण ओबीडियंट सर्वेंट, वर्ड सर्वेंट है ये, दिल तक तनशीन बेफिक्र बादशाह है, बेफिक्र। देखो बाबा हमेशा कितनी भी परीक्षा बाबा को आई, कितनी हमने खुद देखी, जिन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, उनको सब कुछ किया उनके लिए, वो छोड़ के चले गए, बाबा को कोई फिक्र नहीं। आप बताइए, बेफिक्र बादशाह थे। बाबा ने बहुत कोशिश की, परंतु फिर ड्रामा कह के कितनी भी कोई बात आती थी, कितनी भी आती थी बात, हम देखते थे हमारे सामने सामने ऐसा देखा, कितनी बाबा को गाली देते थे, हमारे सामने बड़ा गुस्सा आता था, तो ये बाबा को गाली दे रहे हैं क्या बात। तो बाबा के चेहरे पर या उस शिकन में फिर भी उनको मीठे बच्चे लिखेगा, मीठे बच्चे ही कहेगा वो। तो देखिए, तो यानी कहने का मतलब है निरहंकारी बाबा कहता आज मैं कौन हूं, वर्ड सर्वेंट हूं। स्वयं भगवान कह रहा है, शिव बाबा कह रहा है मैं तो आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो हम क्या है, हमारा बाबा ऐसा कहता हम भी तो वर्ड सर्वेंट है, ये नहीं किसी ने कहता ये चीज काम करो, हम क्यों करें, हम के नौकर हैं आपके, कभी हाँ हम नौकर हैं, वी आर द वर्ड सर्वेंट, ऐसा सोचना चाहिए। बाबा ऐसा सोचते थे, सेवा करते थे, गॉड बाबा इज वर्ड सर्वेंट, हम भी वर्ड सर्वेंट है, यानी बेफिक्र बादशाह है और डबल ताजधारी डबल तिलकधारी है, सब बातें आनी चाहिए। और पूर्वज है, कैसे बैठना चाहिए आपको ब्राह्मणों को, ब्राह्मण स्टेज पे कल्प वृक्ष की जड़ में उनकी जगह है, कहां पर है, कल्प वृक्ष की जड़ में वहां बैठे हैं, बाबा मामा के साथ बैठे हुए हैं और ऊपर से शिव बाबा से वो ले रहे हैं, ताकत ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, माइट ले रहे हैं, और सारे कल्प वृक्ष को हम ताकत दे रहे हैं, वो साकाश दे रहे हैं, ऐसे बैठना चाहिए। अगर हम हमारे पास सारे कल्प वृक्ष का कंधों पर बोझ है, उनको उठाया हुआ हमने, अगर हम भी झुटके खाते रहे ऐसे 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 ऐसे, अमृत वेले देखते हम साथ वाला बैठा झुटका खा रहा है, तो क्या होगा बताओ, अगर आपने ऐसे ऐसे किया तो सारे वृक्ष का क्या हाल होगा, बेचारे वो तो गिर जाएंगे। इसीलिए बड़ा जिम्मेवारी है हम ब्राह्मणों पर, बाबा ने देखो जिम्मेवारी दी है, वो तो निभाई। तो इस प्रकार से इन पांच स्वरूपों को बहुत धीरे धीरे संकल्प करते करते कितना टाइम हो जाएगा, पौना घंटा तो वैसे बीत जाएगा, और आपको शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो गया। देखो बाबा ने ऐसा किया, बाबा हमेशा उनका, मैं फिर कहता हूं, उनका हर कदम हर कर्म हर बोल और हर संकल्प विशेष था, समर्थ था। तो हमें भी उस प्रकार से अपने सब इन चीजों को समर्थ बनाना है। अंत में मैं एक बात बताता हूं, देखो बाबा ने क्या किया, जब देखा बाबा ने शक्तियों को आगे लाया, बहनों को माताओं को बच्चियों को बहुत आगे बढ़ाया, कितना मोस्ट लवफुल। मैं दादी गुलदार से पूछा एक दफा, दादी क्या बात है, आप तो छोटे छोटे थे 8-9 साल के, आपको क्या पड़ी थी कि आप इस ज्ञान को लें, क्या दरकार है। वो कहते हैं बाबा का प्यार जबरदस्त था, लव, कोई ज्ञान नहीं था, बाबा वॉज टू लवफुल, लवलीस्ट था बाबा, उसने हमको संभाला, हमको प्यार दिया इतना सारा, इनको आगे शक्तियों को आगे बढ़ाया आगे। और जब देखा सब शक्तियां आगे बढ़ गई, अब इनमें ताकत आ गई, तो देखो बाबा ने क्या किया, क्या किया, अपना शरीर भी न्योछावर कर दिया। अगर अभी मैंने बाबा होते तब तो हमारी दादियां हमारे ये जो इतना कार्य किया है, काम थोड़ा कार्य है, जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी को हाथ में हाथ सब पावर्स दी, कितनी वृद्धि हुई बताओ, बात मत पूछी, ये सारा बड़ी दादी के होते होते सब बना है, कहां से थोड़े से सेंटर से कितने सेंटर्स बढ़ गए, कितने वो हो गए, सब बाप दादा तो साथ है ही उनके, लेकिन दादियों को प्रत्यक्ष करने, शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने ये भी कर दिया। तो हमारा फर्ज भी क्या बनता है कि हम शक्तियों को, जो हमारी बहनें हैं उनको भी आगे रखें, हम उनको आगे बढ़ाएं। बाबा ने ये किया। युवकों, हम देखो, हम 20 साल युवकों को कितना संभाला बाबा ने। अगर अब बाप हमें ज्ञान ना मिला होता तो हम क्या होते, छोटी सी फैमिली होती, हद बिल्कुल हद में होते। बाबा ने बेहद में ला दिया, कितना बड़ा उपकार किया हम बच्चों पर। हमको भी ऐसे करना है। मैं एक आगे बताऊं छोटी सी बात। हम एक छोटा सा काम करके आए थे, दिल्ली में हम रहते, चित्रशाला थी, छोटा सा चित्र बना के लाए और बाबा को दिखाया आकर के। इसकी आल बन चुका था, बाबा ने देखा, बाबा को अच्छा लगा, फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया और बाबा ने कहा गद्दी पर साथ बैठो। मैं तो हिचकिचा रहा था, फिर बैठ गया। बाबा ने महावाक्य के वरदान उच्चारण किया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। आप बताइए, ये बताओ बाबा का कितना बड़ा महावाक्य, कितना बड़ा वरदान है। इससे इतनी सेवा बढ़ी, इतनी सेवा हमने की, कितने प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने और वो चित्र बने, मेले बने, बहुत सेवा हुई। तो हम बच्चों को भी क्या करना है, कोई किसी में छोटा सा भी गुण हो ना, बाबा सिखाता है, उस गुण को मैग्नीफाई कर दो, वो गुण उनको होगा और बढ़ जाएगा और सेवा में लग जाएगा। बाबा ने हर एक बच्चे से सेवा ली। तो बाबा ऐसे हमारे बाबा थे, बहुत मीठे बाबा। एक और बात बताऊं कि हमारी लौकिक सिस्टर भी ज्ञान में थी, ज्ञान में आ गई, मैट्रिक पढ़ रही थी, मैट्रिक पास हुई। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर बनना है, मम्मा ने कहा नहीं नहीं स्पिरिचुअल डॉक्टर बनो। मैट्रिक भी पढ़ के आगे बन गए, तो सेंटर में भेज दिया, कोई ट्रेनिंग वेनिंग सेंटर में भेज दिया। तो क्या हुआ, उनको कोई कुछ समय बाद बीमारी होगी बहुत बड़ी, तो बीमारी तो उसने बाबा को लिखा मैं अपने लोग के घर जाती हूं, ठीक होके फिर वापस आऊंगी। बाबा ने कहा नहीं 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 तुम मेरे पास आओ। बाबा के पास गई, बाबा ने उनकी दवाई तो दिलाई जो भी थी, लेकिन ऐसी पालना की, रोज बाबा सेब काटते थे, उस पर मक्खन लगाते थे और उनको खिलाते थे, फिर वजन करते थे। बताओ तो थोड़े दिनों में वो ठीक होकर चले गई। बताओ कितनी जबरदस्त पालना है। आप बताओ क्या ये लौकिक बाप ऐसा कर सकता है क्या? लौकिक बाप चलो दवाई लो ये खाओ, बाबा अपने हाथों से काट के मक्खन लगा के उनको खिलाया। तो ये है भगवान की, बाबा की पालना। हमको भी ऐसे करना है, जो टीचर हैं कुछ हैं, छोटा है तो उसकी पूरी संभाल करके उनका भी पूरा ठीक देखना है, ताकि आपको देख करके वो उनकी याद भी बाबा में चलती रहे। इस प्रकार से हमने बाप समान बनना है, बाप को फॉलो करना है और यही इन तरीकों से ही हम बन सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। Dear.